مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم اس سروے کی فائنڈنگز کا تجزیہ کریں گے جس میں مشرق وسطی کے 16 ممالک میں 18 سے 24 عمر کے درمیان 3,500 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے مشرق وسطی کے حالات سے متعلق سوالات کیے گئے ہیں۔ سروے کے مطابق 77% نوجوان جو ہیں وہ داعش کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس کو ایک بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ 50% سے زیادہ نوجوان داعش کے ایجنڈے اور اس کی سوچ کو رد کرتے ہیں۔ آگے چل کر اس سروے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ 36% کی نظر میں عرب اسپرنگ کے بعد خطے میں بہتری آئی ہے۔ اور سامعین، آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 2012 میں اسی قسم کے ایک سروے ہوا تھا اور اس میں یہ پرسنٹیج جو تھی یہ 72 تھی، یعنی اس وقت 2012 میں 72% جو لوگ تھے ان کی نظر میں عرب اسپرنگ جو ہے اس کی وجہ سے مثبت تبدیلیاں خطے میں آئی ہیں۔ اب 36 یہ گر کر یہ پرسنٹیج جو ہے 36% ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 85% مشرق وسطی کے جو نوجوان ہیں وہ امریکہ کو ٹاپ اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر نوجوان جو ہے وہ جمہوریت کے مقابلے میں امیریت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کچھ اہم نکات تھے اس سروے کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مشرق وسطی کے نوجوانوں کی سوچ میں بظاہر جو تبدیلی نظر آ رہی ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر مشرق وسطی کے نوجوانوں کی جو سوچ ہے اس کا موازنہ ہم کریں گے پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کی سوچ سے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی تقریباً 14 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں انتہا پسندی ہے، مختلف انتہا پسند نظریے کے گروپس جو ہیں وہ اس وقت بھی کافی فعال نظر آ رہے ہیں، دونوں ممالک میں ان کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، تو کیا وہاں بھی کچھ نوجوان جو ہیں ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ اگر وہاں آ رہی ہے تبدیلی تو اس کی کیا وجوہات ہے، اگر نہیں آئی ہے تو اس صورت میں ہم کیا کس کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مشرق وسطی کے امور کے دو ماہرین نے، منظر وسیم صاحب نے لندن سے اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے یہاں یو ایس سے، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے باقی پینلسٹ میں شامل ہیں ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب، ویل نون ایجوکیشنسٹ ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے اب سے 15 منٹس بعد۔ اور کچھ دیر پہلے میں نے انٹرویو کیا ہے افغانستان کے یوتھ افیئرز کے وزیر کمال سادات صاحب کو، ان کے انٹرویو بھی مختصراً ہم آپ کو سنانا چاہیں گے کہ وہاں کی نوجوان جو ہے وہ جو طالبان ہیں، داعش ہیں اور ڈفرینٹ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاٹا یوتھ ونگ کے نائب سربراہ محسن داور صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں آگے چل کر جوائن کریں گے۔ آپ منظر وسیم صاحب اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ منظر وسیم صاحب، پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ یہ جو فائنڈنگز ہیں، اور میرے خیال میں مختلف ایشوز پہ بات ہوئی ہے لیکن پہلے ہم داعش پہ آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ داعش کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب داعش پیدا ہوا تو اطلاعات یہ تھیں کہ مشرق وسطی کے بیشتر جو نوجوان ہیں وہ اس گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن اب جو سروس ہو رہی ہیں اس کے مطابق ایک بڑی تعداد جو ہیں وہ داعش کے نظریے کو رد کرتے ہیں، کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں، کہاں تک ایگری کرتے ہیں اور کس طرح آپ اس فائنڈنگز کو دیکھتے ہیں؟
جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رفلی جو ہے ایج گروپ پورے گلف ایریا اور ورلڈ کے اندر جو ہے تقریباً 60% جو لوگ ہیں ان کی عمر جو ہے 30 سال سے کم کی ہے عرب ورلڈ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو، उससे ये पता चलता है कि जो कंपेयर टू जो पुरानी थिंकिंग थी 30 साल पहले, जिस तरह लोग सोचते थे वैसे अब नहीं सोच रहे, और वो जो थे डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर ब्रॉट अप हुई थी उनकी, और ये जो यंग बच्चे हैं ये और लड़के लड़कियां हैं, इनकी इनकी एनवायरनमेंट बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है। सपोर्ट, जब आप बात करते हैं कि इसकी सपोर्ट ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये काफी एक कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है, क्योंकि अगर हम इस पूरे सर्वे को ही एनालिसिस करते हैं तो इसमें इराक, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, पैलेस्टाइन, टूनिसिया, मोरक्को, अल्जीरिया और यमन और फिर गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज भी हैं बीच में,
लेकिन शाम नहीं है इसमें
इन सबके। जी सीरिया को बीच में से उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये एक ऐसा है कि माइंडसेट फर्क है सबसे ज्यादा उस एरिया में जहां पर के सऊदी अरब हो गया और इसके करीब करीब के जो इलाके हैं, यहां पर हम देखते हैं तो हार्ड लाइनर्स ज्यादा हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड के अंदर हार्ड लाइनर्स माइंडसेट इतने ज्यादा स्टे नहीं करती, तो ये सर्वे स्लाइटली क्वेश्चनेबल है। दूसरा बात जहां तक ये आ जाती है कि हम इसकी मजीद डिटेल में अगर हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो सपोर्ट थी इनकी, जाहिर है कि 13% अगर इसी रीजन के अंदर पहले भी सर्वे किया गया था, अगर हम ये अज्यूम करते हैं तो 13% पहले 19% थी 2015 में और अब 13% आ गई है, 19 से 13, दैट मीन के 6% जो है वो कम हुई है उनकी सपोर्ट। डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि जो हार्ड लाइनर्स का भी एक जो माइंड सेट है वो अगर हम देखते हैं तो वो हर कोई विन की तरफ जाता है। अभी इस वक्त सिचुएशन जो कि रिसेंटली चेंज हुई है रशिया के आने के बाद से, तो जो एक एक बलबला सा चल रहा था जिसमें लग रहा था कि दाइश जो है हर जगह पे कब्जा करके तो अपनी हुकूमत बना सकेंगे, लेकिन उनको हॉल्ट सा एक रुकावट थी उनके इस ड्राइव में आ गई है, तो उसका इफेक्ट हम देखते हैं तो इन सभी लोगों के ऊपर डेफिनेटली हुआ होगा पूरे मिडल ईस्ट में। लेकिन इसको ये गलत नहीं समझना चाहिए क्योंकि अभी भी अगर हम देखते हैं पूरी पॉपुलेशन का 19 से 20% भी अगर लोग जो हैं इसकी सपोर्ट इन्होंने एक्टिवली सपोर्ट करने का सोचते हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है और इसके ऊपर मजीद काम होना चाहिए ताकि इनके माइंडसेट जो है वो न्यूट्रलाइज हो।
ठीक, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये मुस्बत तब्दीली जो है मशरिक वस्ता में जो नौजवान तबका है उनकी सोच में आ रही है नजर।
जी जी बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन हम देखते हैं तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में बहुत काम करना बाकी है।
ठीक डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, ये जो तब्दीली आ रही है जिस तरह मंजर वसीम साहब ने भी कहा कि दुरुस्त डायरेक्शन में चीज़ जो है वो हमें जाते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा सूरत हाल काफ़ी गंभीर थी और बहुत से लोग जो थे वो दाइश को ज्वाइन कर रहे थे मशरिक वस्ता के अंदर, इनके हामी काफ़ी तादाद में थे, अब उसमें कमी नज़र आ रही है, तो इसका क्रेडिट जो है वो आपकी नज़र में जो वहाँ पे मेज़बान जो ममालिक हैं मशरिक वस्ता के वो हैं या फिर मगरबी ममालिक जो हैं, ज़ाहिर है वो भी अपनी तौर पर इन जो दाइश हैं और बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट बोको हराम जैसी जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रही हैं काफ़ी अरसे से, या उनको क्रेडिट जाता है, आप किस तरह देखते हैं इसको?
जैसे मैं देखता हूँ वो मुझे लगता है कि इसमें दाइश की जो तर्ज हुकूमत है उनका जो तर्ज जिंदगी है और उनकी जो प्रैक्टिकल जो वो काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जिस तरह से इंसानियत का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जिस तरह से इंसानियत की तोहीन कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने गुलामी जो इंसान ने लाखों करोड़ों साल की तरक्की के बाद ख़त्म की उसको वो दोबारा शुरू कर रहे हैं, जिस तरह वो औरतों और कमज़ोर लोगों के ऊपर मजालिम ढा रहे हैं और उनको सेक्सुअल स्लेव्स और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, वो औरतें बेच रहे हैं लोगों को, ये सारी बातें जो हैं वो मंजरें आम पे जो लोग ला रहे हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी क्रेडिट उन लोगों को जाता है, उन जर्नलिस्टों को जाता है, उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है जिन्होंने दाइश का जो असल उनका चेहरा है वो अवाम के सामने लाए हैं, और जो फैंटसी एक की दुनिया में या एक मुसलमान नौजवानों में और मुसलमान अरब सोच रखने वाले लोगों में है शरीयत की और खिलाफत की और एक यूटोपिया जो जिन लोगों ने बना रखा है जिसमें हर चीज़ जो है वो शरिया के नाफिज होने से ठीक हो जाएगी और खिलाफत के आने से एक दूध की नहरें बहने लगेंगी और अमन सुकून हो जाएगा और हर इंसान जो है वो दूसरे के बराबर समझा जाएगा। ये जो आलीशान हवाई किले हैं, ये इनको टूटते हुए जब लोग देखते हैं दाइश के हाथों, फिर वो उनको ये समझ में ये बात आती है कि असल हकीकत जो है वो अपने मसाइल हल करने में है, और एक फैंटेसी की दुनिया या एक ख्याली पुलाव पकाने या एक यूटोपियन थिंकिंग रखना जिसके अंदर शरिया और खिलाफत जो है वो लीडिंग सोच हो, ऐसी बात नहीं है। इंसान को अपने मसाइल हल करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव जो है वो दाइश है। जब दाइश के इकदाम को लोग देखते हैं तो वो जो है उससे दूर रहते हैं। किसी हद तक जो रिसर्जेंस भी हो रही है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जो सिविल सोसाइटी है, औरतें हैं, जो महरूम तबके हैं, वो अपनी आवाज को सेक्युलर तरीके से, नए बयानिए से, नए तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें किसी हद तक उनको कामयाबी हुई है। तो वो ये भी एक बात है। दूसरा जो एक हर चीज का एक टाइम साइकिल, वो कहते हैं कि एक लाइफ साइकिल होता है। जो तहरीके मसलन आपने तारीख में देखी होंगी, जो एक बरहना कैपिटलिज्म था, एक कैपिटलिज्म जिसने इंसानियत की तस्लील की, इंसानों को बेचा, गुलामी दी, वो खत्म हुआ, उसकी लाइफ खत्म हुई। फिर सोशलिस्ट थिंकिंग, एक्सट्रीम सोशलिस्ट थिंकिंग आई, जिसमें किसी इंसान को किसी किस्म का कोई वो जो है वो मलकियत के हकूक से महरूम किया गया, बोलने से महरूम किया गया। उनका एक टाइम आया, वो अपनी पीक पे गए, उनकी पीक जो है वो खत्म हुई और वो वापस हुए। और एक तारीख का जो अमल है उसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की जो अच्छी चीजें थी वो बाकी रह गई और तारीख का सफर आगे बढ़ा। तो वो इसी तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट जो मेरे ख्याल में तो शुरू से ही नाकाम होना था दाइश का और खिलाफत का और शरीयत का, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा और ये तो एक तारीख का एक वेस्टेज है, मतलब ये आसार कदीमा है। या जब इंसान की तारीख लिखी जाती है तो उसमें जिस तरह इंसान ने पहले पत्थरों पे लिखना शुरू किया, फिर उसने कागज पे लिखना शुरू किया, फिर उसने अब कंप्यूटर पे लिखना शुरू किया, तो ये जो शरिया और खिलाफत के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे इंसान ने पत्थरों पे लकड़ी पे लिखना शुरू किया। अब हम लोग जब बच्चे थे तो मुझे याद है कि हमने लकड़ी की तख्ती लेके हम लोग स्कूल गए और वो तख्ती को धोते थे और लकड़ी के ऊपर लिखते थे, फिर कागज आया, फिर तो अब ये है कि हम कंप्यूटर पे और ईमेल पे बात करते हैं। तो शरिया और ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये तो इतने पुराने हैं, लेकिन फॉर सम रीजन इनकी रिसर्जेंस हुई और उनकी रिसर्जेंस में, जैसे मैं पहले कह रहा था, उसमें बहुत खाम ख्याली, हवाई किले और एक जो हुक्मरान तबकात हैं जिसमें खासतौर पर मजहबी पार्टियां और जिसमें ये मिडल ईस्ट के जो मुला लोग हैं, वो उन्होंने एक इसको रिसर्जेंस दी। और उसमें क्योंकि सरमाए का भी अमल दखल रहा कि पेट्रो डॉलर्स आए, बड़ी बड़ी इमारतें बनी, लोगों ने जाके पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह से जो सेक्युलर सोसाइटी थी वहां जाके काम किया, और वो भूल गए कि उनकी सेक्युलर सोसाइटीज ने उनको बोलने की इजाजत दी, उनके इंसानी हकूक का तहफ़ दिया। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ उनकी उजरत भी नहीं दी गई और उनकी जुबान काटी गई। और उन ममालिक में जिस तरह के सऊदी अरब और इस तरह के ममालिक में जो मॉडल है हुकूमत का, उसको दाइश ने कॉपी किया। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, वो अपने तारीख अपना एक मेरे ख्याल में साइकिल वो पूरा करेगी और मुझे बहुत उम्मीद
और
है।
यही सर्वे में भी 78% जो मशरिक वस्ता के नौजवान हैं उनका भी ये ख्याल है कि दाइश जो है वो अब कोई खिलाफत बनाने में कामयाब नहीं होगी और आखिर में उसको शिकस्त होगी। जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, हमारा फोकस जो है इस शो में जाहिर है दाइश पर ही होगा और पाकिस्तान के साथ वहाँ के जो नौजवान हैं उनकी सोच के साथ कंपैरिजन करने से पहले इसी की जो बाकी वो हैं फाइंडिंग्स हैं उस पर मैं थोड़ा सा वो लेना चाहूँगी कमेंट्स। और मंजर वसीम साहब, इसमें ये भी है कि 72% के मुकाबले में अब 36% फीसद जो लोग हैं वो अरब स्प्रिंग के बाद उसको एक समझते हैं कि उसके बाद खिते में बेहतरी आई है. काफ़ी बड़ा गैप जो है आया है. इसकी एक तो जो हमें क्योस नज़र आ रहा है बज़ाहिर वो एक वजह नज़र आती है, बाकी क्या वजूहात आप इसके देखते हैं?
जी दो चीज़ें अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नेगेटिव माइंडसेट आया और कि अगर हम नेट रिजल्ट देखते हैं कि अरब स्प्रिंग से क्या फायदा पहुंचा है तो सिवाय एक दो मुल्कों को छोड़ के बाकी कहीं पर कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला नहीं. इसका इसी वजह से ये हुआ कि उनको एक ख्याल आया और प्लस अरब ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा की कैंपेन्स भी चली जिसमें कि ये कहा गया कि ये अरब स्प्रिंग जो है ये ठीक नहीं है और जाहिर है कि उसका इफेक्ट अल्टीमेटली आना ही था. प्लस साथ ये भी हुआ कि बहुत से जगहों पे जहां अरब स्प्रिंग का नाम लिया गया वो बाद में पता चला कि इंजीनियर्ड डिसरप्शन थी उन कंट्रीज की. दूसरे मुल्कों ने फायदा उससे उठाया और उनके हालात जो थे खराब किए इन मुल्कों के. इस सूरत में ये पॉसिबल नहीं था कि कहीं वहां पर वो, क्योंकि जेन्युइन पॉलिटिकल नहीं थी अपराइजिंग और जहां पर थी भी उसको यूज किया गया तो नेट रिजल्ट नहीं निकला. तो अगर हम पूरा आप देखते हैं दाइश के सिलसिले में भी ले लें या इस अरब स्प्रिंग को भी आप ले लें तो दो चीजें हमें क्लियरली नजर आती हैं कि अरब जो है वो बहुत प्रैग्मेटिकली सोच रहे हैं या अरब यूथ जो है कि उन्होंने देखा कि इस डेमोक्रेसी के थ्रू हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं. तो उनको पता चला कि डेमोक्रेसी को परस्यू करने से उनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला. सिमिलरली क्या इस्लामिक हार्डलाइनर्स की तरफ जाके उनको अच्छा रिजल्ट मिला तो उनको वो भी अच्छा नहीं मिला. तो उनके पास ये दोनों चीजों को अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आखिर में उनके पास यही बचता है कि जो मोनार्कीज जिस तरह चल रही हैं इनको वैसे ही चलते रहने देना चाहिए. लेकिन अगर हम देखते हैं कि अभी जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप साहब की अभी तकरीर लाइव चल रही थी बातें कर रहे हैं तो उसी में इससे जरा पहले की बात है
जी.
तो वो जिस तरीके से क्लियर कट कह रहे हैं कि हम अमेरिका की एयरफोर्स आर्मी को बढ़ाएंगे और उससे क्लियर ये एक इंप्रेशन कि अब मिडिल ईस्ट और इन जगहों के ऊपर जंगे ज्यादा होने के चांसेस हैं अगर वो जीत कर आ जाते हैं. अगर ऐसी सिनेरियो होगी तो फिर ये ही दोबारा से हमें पलटता हुआ नजर आएगा. ये जो हमें देखते हैं कि अगर अरब यूथ ने ही इनको सपोर्ट करी हार्डलाइनर्स को तो एक रीजन ये भी है कि अमेरिका ने अपने हैंड्स ऑफ रखी पॉलिसी. उसका ये पॉजिटिव मेरे ख्याल में नजरिया कि ओबामा साहब की जो पॉलिसी थी कि ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए इस सारे टर्मोइल के अंदर, उसकी वजह से उनको एक खौफ जो था कि बाहर से जो एक सबसे जो बड़ी रीजन थी अगर हम याद करते हैं अलकायदा की और ऐसे ग्रुप्स के स्टार्ट होने की वो ये थी कि अरब कंट्रीज को कंट्रोल जो था वो मगरिब की हुकूमतें कर रही थी. उसके अगेंस्ट ये एक रिवोल्ट आया था जिसकी वजह से सारे ये हालात जहां हैं वहां पर पहुंचे. अब क्योंकि मगरबी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा नहीं है उस रीजन के अंदर उसकी वजह से लोगों का जो है एक डिफेंसिव जो मोड है उसको थोड़ा सा चेंज हो रहा है. लेकिन अगर ये दोबारा से शुरू होते हैं जो एक नियो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट था या कॉलोनियलाइज करने का या अपनी प्रॉक्सी कंट्रीज बनाने का, अगर ये दोबारा से आया तो फिर यही आप देखिएगा कि सर्वे करेंगे तो कुछ ही सालों के बाद ये दोबारा से रिवर्स में आ जाएगा. तो मेरे ख्याल में ओबामा की जो पॉलिसी थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो काफी इस तरीके से ठीक थी कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो जरूर कम हुआ रीजन में लेकिन साथ साथ ये हुआ कि अमेरिका के अगेंस्ट एक हेट्रेड थी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम
इमेज बेहतर हुआ
इस वक्त थोड़ी सी कम हुई है. वो अमेरिका का एज ए कंट्री इमेज जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ
ठीक. और 85% नौजवान जो हैं मशरिक वस्ता में वो अमेरिका को अपना टॉप इतिहादी जो है वो ख्याल करते हैं. ओके डॉक्टर रुहेल साहब, इससे पहले कि पाकिस्तान की जानिब हम जाना चाहें, ये जो बात है कि एक और जो पॉइंट है कि बेशतर नौजवान जो हैं मशरिक वस्ता के वो जमहूरियत के मुकाबले में अमीरियत को तरजीह देते हैं, वही रीजंस आप इसके देखते हैं जो मंजर वसीम साहब ने बयान किए हैं या फिर क्या इसकी क्या वजूहात हैं?
जमहूरियत जो है वो एक इरतकाई अमल है और शुरू में तो बहुत मुश्किलात होती हैं. हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अंग्रेजों के आने से जमहूरियत का जो जिस तरीके से जमहूरियत को हम जानते हैं सियासी स्ट्रक्चर है या जमहूरियत जिस तरीके से हुकूमत और अवाम को मुंसलिक करती है, उनका रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश करती है, वो पहले बल्दियाती इंतखाबात मेरे ख्याल में 1894 वगैरह में या उस जमाने में हुए थे
उस जमाने में थोड़े से शहर थे, वोट देना जो था वो उसकी उसमें काफी मुश्किलात थी, जमीन वाला सिर्फ आदमी वोट दे सकता था वगैरह वगैरह। तो उस इर्तकाई अमल से वहाँ कांग्रेस बनी, फिर उसके बाद 1906 वगैरह में मुस्लिम लीग बनी, फिर और दूसरी जमातें बनी, उन्होंने जलसे किए, अंग्रेज हुकूमत ने उसको आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने तरक्की दी, फिर उसके नतीजे में तकरीबन 80-90 साल की के बाद जो है वो इतना एक इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में बन गया कि वहाँ पार्लियामान जो है वो बनी, और 1937 में पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उससे सूबाई हुकूमतें बनी, और वो जब सूबाई हुकूमतें बनी तो उससे मुसलमानों और जो हिंदू जमातें थीं उनके दरमियान आपस में चपकी शुरू हुई। फिर उसके तकरीबन 10 साल बाद जो है वो पाकिस्तान बना और उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो ये जो जमहूरियत जो लोगों ने सीखी थी, जिन लोगों ने पार्लिमानी निज़ाम सीखा था, जिन लोगों ने जलसे जुलूस करने सीखे थे, जिस तरीके से प्रेस में लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की थी, और जिस तरीके से मुख्तलिफ ग्रुप, मुख्तलिफ इलाकाई लोग और मुख्तलिफ मज़हब रखने वाले लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, ये अमल जो है उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। ये सोसाइटी के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को किस तरह से अकोमोडेट करते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर आपको देखेंगे पाकिस्तान में जब जमहूरियत आई और उसको कितने अचकोले लगे, और
बिल्कुल बल्कि अभी तक आजकल भी ये कहा जा रहा है कि जमहूरियत जो है वो खतरे में है। और अगर मशरिक वुस्ता की हम बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर हमने देखा है कि बादशाहत जो है उसका निज़ाम रहा है, और ये बात की जा रही है कि वहाँ के लोग जो हैं वो शायद जमहूरियत के जो फ्रूट्स हैं, जो फवाइद हैं, उससे इतने वाकिफ़ नहीं हैं, तभी जो आमरियत है उसको तरजीह देते हैं जमहूरियत पर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब ने, वेल नोन तर्जानिकार और एजुकेशनिस्ट हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नैयर साहब। जी डॉक्टर नैयर साहब, हम देख रहे हैं कि दाइश को बने हुए पैदा हुए कुछ ही बरस हुए हैं, और जब ये ग्रुप पैदा हुआ तो काफ़ी इतलात ये थी कि मशरिक वुस्ता का के जो नौजवान है बड़ी तादाद में शामिल हो रहे थे इस ग्रुप में। अभी जो लेटेस्ट सर्वेस हो रहे हैं उसके मुताबिक लोग जो हैं वो दाइश के नज़रिए को रद्द कर रहे हैं सख्त अल्फाज में। ये बताइएगा कि ये जो पॉजिटिव एक तरह से तब्दीली मशरिक वुस्ता के नौजवान तबके में नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी इंतहा पसंदी जो है वो रही है, अब भी है, वहाँ के नौजवानों में वक्त के साथ साथ आप क्या देख रहे हैं, कमी आ रही है या फिर उसमें इजाफा हो रहा है?
देखिए, कोई ऐसा सर्वे तो नहीं है पाकिस्तान में जो आपको वैसी ही डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन पहुंचाए जो शाम में उन्होंने देखा है।
ओके, यहाँ एक सवाल प्लीज डॉक्टर नैयर साहब, आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ, तो इसकी क्या वजह देखते हैं? क्या ये हुकूमत की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर जानबूझकर ऐसे सर्वेस नहीं करवाए जा रहे हैं?
देखिए, सर्वेस जो है ये हुकूमतें नहीं करती, ये प्राइवेट पार्टीज करती हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी इतनी मेच्योर नहीं है कि ये सर्वेस करवा के अपने वास्ते रास्ते देखें। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में से शायद ही कोई हो जिसे कभी अपने वास्ते अपने सियासी रास्ते का तयन करने के लिए कभी सर्वे करवा के पब्लिक ओपिनियन देखने की कोशिश। बुनियादी तौर पे वो अपने डिल्यूजन के अंदर बंद रहना चाहते हैं कि जिसमें उनका ख्याल ये है कि उनको बड़ी शदीद बहुत बड़ी हिमायत हासिल है, उसमें न सिर्फ पुरानी पार्टियां शामिल है बल्कि नई पार्टियां भी शामिल है। इमरान खान भी यही समझते हैं कि वो बहुत मकबूल है, और वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं इतना मकबूल हूँ तो मुझे वोट क्यों नहीं मिले। तो ये जो डिल्यूजनल हैसियत है हमारे सियासी जमातों की, उसकी वजह से वो काम नहीं करती, क्या प्राइवेट पार्टीज करती हैं। पाकिस्तान में जो बहुत मशहूर एक सर्वेइंग इदारा है अमेरिका का, उसका पाकिस्तान में एक विंग मौजूद है, और वो मुख्तलिफ किस्म के सर्वेस करते हैं, और वो बड़े क्रेडिबल हैं। उनके जो तरीके हैं वो इतने पॉलिश्ड हैं कि जब उनके रिजल्ट आते हैं तो लोग उस पर एतबार करते हैं। मैं का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि उनको चाहिए उनको कोई बताए कहे कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप ये पता लगा के बताइए कि मैं कि वो जो है वो क्या करेंगे इसमें। मैं इसमें समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हम देखते हैं सर्वे ना होने की मौजूदगी में, वो ये है कि यहाँ पे वो तबकात जो जिहादी पार्टियों के साथ शमूलियत करते थे और करते चले जा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि उनमें कोई कमी नहीं हुई है। जिहादी फोर्सेस की जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी अफराजी कुव्वत है, कोई कमी नहीं हमें नजर आती। हमें ऐसा नजर नहीं आता कि जिहादी कुव्वतें जो है वो अपने बोझ पे लपेट रहे हों और कह रहे हो कि जी हमें अब लोग नहीं मिल रहे, हम जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे जिहादी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ आपकी पहले कभी उनसियत थी और बाद में अब वो उनसियत नहीं रही। मिसाल के तौर पर एक जमाने में तालिबान के खिलाफ इतनी साथ नहीं थे, मगर तालिबान के बहुत से एक्शन ऐसे सामने आए कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ जज्बात पैदा हुए। तो ये सही है कि अब आप पूछेंगे लोगों से तो शायद लोगों में से अक्सरियत तालिबान को पसंद ना करें, पाकिस्तानी तालिबान को पसंद ना करें। हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हों कि जो उसके बावजूद लश्कर तैयबा और या उसका जो जमात दावा है उसको और जैश मोहम्मद को पसंद करें, हालांकि वो भी तकरीबन वैसी ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ ठीक है, वैसी नहीं है लेकिन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उनके साथ तो वफादारी का या पसंदगी के किरदार करें। मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को इस डिल्यूजन में नहीं डालना चाहूंगा, इस गलत फहमी में कि पाकिस्तान का नौजवान इनसे बेजार होता जा रहा है। अभी मेरे पास कोई वजह नहीं है ये मानने की। मेरा ये ख्याल है कि ये अभी तक हैं और इनको अफराजी कुव्वत जब वो चाहेंगे उनको मिलती रहेगी।
ठीक, तो आप इसका जिम्मेदार जो है क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, किसको ठहराते हैं? क्या स्टेट की पॉलिसीज में कुछ कमी है, मीडिया किरदार नहीं अदा कर रहा इस वजह से, या कोई एजुकेशन, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, जो निसाब वगैरह हैं उसमें कोई खराबियां हैं?
तमाम चीजें जितनी आपने बताई हैं वो तमाम चीजें, और उसके अलावा जो में उबार है, गुस्सा है, गम गुस्सा है अमरीका के खिलाफ आपने जो वहाँ का शुमाली अमरीका का सर्वे सुनाया उसमें अमरीका के खिलाफ गुस्सा, गम गुस्सा। मेरा ख्याल पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी। यहाँ पे लोगों के दिलों में से अमरीका के खिलाफ बहुत हल्के भी कम नहीं हुआ है, तो वो जो गम गुस्सा है वो मौजूद है अपनी जगह पे। हिंदुस्तान के खिलाफ जो गम गुस्सा है वो मौजूद है अपनी जगह पे। लिहाजा वो भी वो वजूहात है जो आपकी बताई वजूहात में इजाफा करती है। एक वजह नहीं है, कई वजूहात है और हर एक की सेंसिबिलिटी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात के मजमू के तौर पर बनी हुई है। तो ये मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये अभी तक उसी, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि अब वक्त आ गया है कि किसी एक अच्छी सर्वे ऑर्गेनाइज पाकिस्तान में नौजवानों में सर्वे करके ये चीज पूछनी चाहिए।
ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नैयर साहब, आपने हमें टाइम दिया, कुछ देर के लिए आप हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच। और मंजर वसीम साहब और डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आप दोनों हमारे साथ रहिए, कुछ कॉलर्स हैं उनको हम लेना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हमें कहा जा रहा है कि हमने एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आके हम कॉलर्स के अगर कोई सवालात हैं या उनकी जो राय हैं इस मौजू से मुतल्लिक वो हम सुनेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। जी ओके ओके सामीन, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इस वक्त हम ब्रेक जो है वो नहीं ले सकते। कॉलर्स की जानिब जाते हैं। जी लंडी कोतल से मतीन सुलेमानी साहब, सलाम अलैकुम।
मेहमान हजरात को स्पेशल दुआ सलाम पेश करता हूँ।
जी
मैं मेहमान हजरात से एक दो मुख्तसर सवालात पूछना चाहता हूँ। क्या आया ये अरब ममालिक में किसने ये सर्वे कराई? اور آیا یہ سروے بالکل نہیں ہے جو سروے کرائی گئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے حقائق پر مبنی ہے یا نہ نہیں ہے؟ دوسری اور یہ کس نے کرائی ہے اور پاکستان میں کیوں نہیں کرائی جا رہی ہے؟ اور این جی او کرا رہے ہوں گے یا کوئی اور کرا رہے ہوں گے؟
اوکے یہ اس کا
ایک اور سوال ہے.
جی جی
ایک اور سوال ہے مختصر.
جی
مختصر سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر سروے کرائی جائے تو میرے خیال میں حقائق پہ, خاص کر فاٹا کی بات کر رہا ہوں, تو 98% لوگ امریکہ کے خلاف ہوں گے اور 100% انڈیا کے خلاف ہوں گے.
اچھا اور داعش؟
داعش کے خلاف لوگ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کوئی بھی پاکستان کی داعش کے خلاف نہیں ہوگا کوئی بھی.
اچھا بہت شکریہ کال کرنے کا.
امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے نا.
ٹھیک ہے,
کوئی بھی اگر
بہت شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی متین سلیمانی صاحب. اور بھی کالرز ہیں لیکن آپ کا جو پہلا وہ تھا سوال کا پہلا حصہ اس کا جواب میں دینا چاہوں گی کہ یہ ASDA بوران مارس ٹیلر نامی ادارہ ہے, انہوں نے یہ سروے کروایا ہے اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی سرویز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ مور اور لیس جو ہے وہ ایک جیسی ہیں. تو کہاں تک یہ کریڈیبل ہیں اس کے جو فائنڈنگز ہیں اس پہ منظر وسیم صاحب کو آپ نے سن اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کو بھی. ایک اور کالر کو ہم سنتے ہیں, میاں والی سے مرید خان صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم جناب, داؤد خیر سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بارود اور جوان میں کوئی فرق نہیں ہے, بارود کو جتنا بھی دبائیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا اور جوان کے جذبات کو جتنا دبائیں گے اتنا وہ خراب کرے گا. یہ جن ملکوں میں ہلچل مچ گئی ہے اور تباہی مچی ہے صرف اور صرف ان پر ان کو دبایا گیا ہے اتنا سا اور آخر وہ پھٹ گئے اور وہاں کی حکومتیں الٹ گئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جمہوریت کا کہ ایک جھاڑو والا اور ایک مفتی, اس کا کوئی اس کے ووٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کوئی ووٹ کا کوئی اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ بھائی اتنی تعلیم ہونی چاہیے ووٹ دینے کے لیے اور اتنی عمر ہونی چاہیے. ایک 18 سال کے بچے کو کیا پتا ہے کہ الیکشن ووٹ کی کیا قیمت ہے.
ٹھیک, بہت شکریہ. کامیاب بنگش کوہار سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جب دنیا میں صحیح انصاف نہیں ہوگا اور بڑی طاقتیں جتنی بھی ہیں جس طرح سپر طاقتیں ہیں وہ اپنے وفادات کی خاطر لگی رہیں گی تو ظاہر ہے کہ ظلم بڑھتا جائے گا اور مظلوم اپنے لیے جب راستہ چنیں گے تو وہ ظالم سے بھی بدتر ہو جائیں گے, نمبر ایک. اور دوسرا سوال میرا جمہوریت کے تقاضے سے پاکستان کے حوالے سے, تو پاکستان میں تو جمہوریت ایسی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے, پارٹیوں میں کچھ چند خاندان ہیں جو مسلط ہیں اور جس کی وجہ سے جمہوریت کو کامیابی صحیح حاصل نہیں ہو رہی ہے, جوانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, عوام کو موقع دینے کا. شکریہ. شکریہ جناب,
بہت شکریہ. آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. اس پہ میں منظر وسیم صاحب آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی اس سے پہلے کہ آپ سے ہم اجازت لیں. وہ یہ کہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی, یہ وجوہات بتائی جاتی تھی کہ چونکہ مشرق وسطی میں اور مسلمان جو دنیا ہے ان کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے یا پھر یہاں پہ غربت ہے یا بے روزگاری ہے نوجوان طبقے میں, اسی وجہ سے یہ داعش جیسے گروپس کو جوائن کر رہے ہیں. لیکن حالات تو اگر آپ دیکھیں تو غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہاں جو خانہ جنگی ہے کئی ممالک میں ہمیں نظر آ رہی ہے, بے روزگاری جو ہے وہ بھی اس وجہ سے سفر ہوئی ہے. تو یہ جو پھر اگین یہ جو پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے نوجوان طبقے کے سوچ میں, اس کی پھر کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ حالات تو سیم ہیں.
جی اس کو یہ جو دیکھتے ہیں کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے خیال میں کہ کیونکہ ان کو پازیٹیو ریزلٹ نہیں مل رہا تو اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا چینج ہو گیا ہے. جو کچھ ہوتا آ رہا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ ان کے آئل ویلتھ کی وجہ سے جس طریقے سے اس کو مس یوز کیا گیا اس ریجن کو, اس کے اندر جو ہیٹریڈ ہے وہ اپنی جگہ ویسے ہی کی ویسے ہی ہے. نو باڈی لائکس ٹو بی یوزڈ کہ وہ ان کی جو حکومتیں ہیں ان کو باہر کے ملکوں سے مغرب سے آ کے برطانیہ اور امریکہ اور فرانس اور جرمنی اور جتنے بھی بڑے ملک ہیں ان کے اوپر الزامات یہ لگائے گئے کہ ان لوگوں کی وجہ سے وہاں پر یہ بادشاہتیں قائم کی گئیں اور یہی بیٹھ کے تو ان کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ یہ سارا ٹرمول شروع ہوا. تو میرے خیال میں جو ये माइंड सेट है, इसको हम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इस तरीके से ना रीड किया जाए सिर्फ कि ये जो है कि बहुत बड़ा माइंड सेट चेंज उधर आएगा। बात सिर्फ यही है जिस तरह उन्होंने पहले बताया था कि जब उनकी हेट्रेड बढ़ जाती है, उनको कोई रिजल्ट नजर नहीं आता, तो फिर वो उस चीज को परस्यू नहीं करते। अगर माइंड सेट देखते हैं तो इसको बहुत पहले लिखा था इब्ने खुलदून ने कि ये फैंस थिएटर है कि फैंस के ऊपर बैठ के देखते हैं, फिर जो जीत रहा होता है उसकी तरफ हो जाते हैं।
ओके,
बहुत ये सिचुएशन है, उनको जीत नजर नहीं आ रही, तो इस वक्त ये सर्वे का बैलेंस दूसरी तरफ थोड़ा सा चला गया। अगर जीत नजर आई तो ये अगेन टिल्ट कर सकता है दूसरी तरफ।
बहुत शुक्रिया मंजर वसीम साहब, टाइम देने का बेहद शुक्रिया हमारी तरफ से, खुदा हाफिज। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आप हमारे साथ रहिए, और कुछ देर में फाटा यूथ विंग के जो से मुंसलिक मोहसिन दावर हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और ये 5 साल अरब स्प्रिंग को हो चुके हैं और दाइश को पैदा हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त मशरक वस्ता के नौजवानों ने जिस शऊर का मुजाहिरा किया है, और इन बहुत कम अरसे में इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि दाइश जो है उसका एजेंडा गैर इस्लामी है, गैर इंसानियत वाला है, और ये कुछ जो है ये तब्दीली या ये रियलाइजेशन इसको कह दें, ये हमें पाकिस्तानी नौजवानों में नज़र क्यों नहीं आ रही, इसकी क्या वजूहात देखते हैं आप?
में जो जमहूरियत का एक उसमें जो डाइकाटमी है, पाकिस्तान इस लिहाज से एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी है कि पाकिस्तान में जैसे भी है एक जमहूरी अंदाज है, उस पे हुक्मरान तबके का गलबा है, और वो जो हुकूमत जो लीवर्स ऑफ पावर हैं उसमें दो बड़ी ताकतें हैं, एक सियासी ताकतें हैं और दूसरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है। तो एस्टेब्लिशमेंट और सियासी ताकतों ने किसी हद तक आपस में एक ना लिखा हुआ एक मुआहदा किया हुआ है कि जिसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो राइट विंग जो सोच है उसको नए से नए बोतल में डालते रहते हैं, वो उसके रंग बदलते रहते हैं, उसका जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, और उसको मौजूद रखने के लिए जो बुनियादी हकूक हैं, जियो पोलिटिकल हकूक हैं, कश्मीर का मसला हो गया या हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो, या अफगानिस्तान में जो अमेरिका के आने की वजह से और अमेरिका के जाने का जो उनका प्रोग्राम है उसकी वजह से जो तब्दीलियां आई हैं, उनको उनमें से ये अपना अंग्रेजी में जिसे कहते हैं रीजन डिटेयर, लाइक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, यानी इन असबाब में से वो असबाब ढूंढते रहते हैं, उनमें से एक इस राइट विंग बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए वो मवाद ढूंढते रहते हैं, और उसके जो बरखिलाफ मवाद होता है उसको वो सप्रेस करते रहते हैं। पाकिस्तान में जो सेक्युलर सोच रखने वाली सियासी जमातें थी उनको दबाया गया, पाकिस्तान में जो सेक्युलर या आजाद ख्याल जो लोग थे, जो फैक्ट की दोनों साइडें या सिक्के की दोनों साइडें जो है वो, या आर्ग्यूमेंट की दोनों जो चीजें हैं उसको इंडिपेंडेंटली जो लोग सोच के तो अपनी राय देना चाहते हैं, उन लोगों की राय को बहुत बुरी तरीके से बुरे तरीके से दबाया गया। उसको दबाने में मीडिया भी जो है वो भी शामिल है, उसको दबाने में सियासी जमातें भी शामिल हैं, और उसको दबाने में अस्करी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे आगे है। तो ये नए नए रंग दे के राइट विंग दाएं बाजू की कहानी और दाएं बाजू को खून देने के लिए, और उनको जवान नए नए जो है पाकिस्तान की जो ऐसे तबकात हैं जहां तक हुकूमत की रसाई नहीं है, जहां तक हुकूमत ने अपने आप को वहां से अलहदा कर लिया है और उनको तालीम के मौाक नहीं मुयसर, और वो जो तालीम है और वो जो इंडाक्ट्रिनेशन है वो दाएं बाजू के हाफिज सईद और इस तरह के लोगों और उनकी उनके जो मदरसे और उनकी जो इशातें और उनकी जो किताबें और उनकी जो सोच है उसके हवाले हुकूमत ने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, नौजवान लोगों की पॉपुलेशन को उनको दे दिया एक लिहाज से कि वो उनको जो मर्जी फिक्र उनको देनी चाहें, जिस तरह जिस तरीके से उनको इंडॉक्ट्रिनेट करना चाहें वो करते रहें। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में बहुत सारा मवाद मौजूद है, बहुत सारा बारूद, जिस तरह आपके वो कॉलर कह रहे हैं, बहुत सारा बारूद मौजूद है और बहुत से जवान और एक ऐसा तबका पैदा हो गया जिसकी सोच बदलने में जो पिछले 20-30 सालों से जो लोग जवान हुए हैं अंधेरे में, उनकी सोच को बदलने में बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बहुत परसिस्टेंटली और बहुत एक मकामी जुबान में और एक अपनी जुबान में और एक एक ऐसे बयानिए में जिसमें मगरिब का नाम ना हो और जो पाकिस्तान की मिट्टी से निकले और पाकिस्तानियों की सोच से निकले और पाकिस्तान की जो 5000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो उन लोगों की जो रेजिलियंस है, वो सारी चीजें उसमें शामिल हों, उसमें हीर रांझा की कहानी हो, उसमें और इस तरह की जो लोकल तरीके से उन लोगों के जहन बदलने में जो टाइम लगेगा वो बहुत लगेगा। और उसके लिए जो लोग चाहिए, जो शायर चाहिए, जो ड्रामे लिखने वाले चाहिए, जो फिल्में बनाने वाले चाहिए, जो इदारिये लिखने वाले जर्नलिस्ट चाहिए, वो लोग जो हैं वो बदतरीज कम होते जा रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पीपल्स पार्टी का हुआ और पीपल्स पार्टी ने भी और ये अब ये सोच लिया है कि हमें इकदार में आने के लिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी गाइडेंस चाहिए और उसकी छतरी के बाहर हमें अपने अपनी बात नहीं करनी। इसलिए वो सेक्युलर नजरियात रखना और इंसान को, हर इंसान को, हर मजहब को बराबर,
यही से फिर आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, इसको सुन के फिर जहन में यही सवाल आता है कि एक्सट्रीमिज्म को फ़रोग देने में ना सिर्फ पाकिस्तान, और भी पाकिस्तान की तरह कई स्टेट्स हैं जो उनकी पॉलिसीज इस तरह है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उससे एक्सट्रीमिज्म को फ़रोग दिया जा रहा है या एक कन्फ्यूजन जो है एक वो बरकरार रखने की कोशिश की जाती है इस हवाले से, तो इससे स्टेट को क्या फ़ायदा होता है? ये आगे चलकर मैं आपसे इस पे बात करूंगी। इस वक्त हम फाटा चलते हैं और मोहसिन दावर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन दावर साहब। जी मोहसिन दावर साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
बिल्कुल जा रही।
जी मोहसिन दावर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई बरसों में कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं मुख्तलिफ नामों से पैदा हुए हैं अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी, ख़ास तौर पर फाटा में। तो जो नौजवान तबका है ख़ास तौर पर फाटा का, वो किस तरह इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को देखते हैं, उनकी सोच क्या है?
जी बहुत शुक्रिया शहना आपने फोन के लिए। असल में फाटक के जो जवान है, फाटक जिस तरह जो बात कर रहे थे कि उन एक इस तरह की पिक्चर पोर्ट
जी, मोहसिन दावर साहब आप अगर आप सेल पे बात कर रहे हैं, अगर अपनी प्लीज पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दे, आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है हम तक।
जी
अभी सही है।
मैं आखिरी जो 10-15 साल हमारे गुजर गए उसकी
ओके। मोहसिन दावर साहब, दोबारा हम प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको दोबारा कॉल करें, क्योंकि आप की बातें जो हैं वो सही तौर पर हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं। दोबारा आपको चंद सेकंड्स में बात कॉल करते हैं। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, उस सवाल का अगर आप जवाब दें कि किसी भी स्टेट को, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और, हम देख रहे हैं सऊदी अरब का नाम भी लिया जाता है कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट एक तरह से वो है व्यूज़, उसके लिए तो एक स्टेट की तरफ से एक काउंटर नैरेटिव जो होना चाहिए वो भी नज़र नहीं आता, तो जिससे ये मतलब लिया जाता है कि शायद ये कन्फ्यूजन को बरकरार रखना चाह रहे हैं। आप स्टेट, ऐसी स्टेट्स को फ़ायदा क्या पहुंचता है?
देखिए लॉन्ग टर्म में तो उनका नुकसान है, शॉर्ट टर्म में उनको जो बिस्तर इकदार तबका है उसको अपना इकदार जो है उसको पायदार करने में बहुत मदद मिलती है। अब वो जिन लोगों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हैं वो अपने आप को सियासत में रखना चाहते हैं और जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स और इस तरह के जो लोग हैं उनको एक दायमी जंग चाहिए, उनकी एक सोच ही ये है, और उसमें उनकी सोच का जो उसकी जो वजह है वो तो उनकी तरबियत है, लेकिन ये है कि उनको अपने अपने हद में रहना चाहिए और वो उनकी उनको अपनी सोच जो है वो हुकूमत पे मुसलत नहीं करने देना चाहिए, लेकिन वो इससे बेखबर हैं। वो ये उन्होंने ये पिछले 50-60 सालों से ये सोच रखा है कि जो सियासतदान हैं वो सुलह करना चाहते हैं, वो लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, और हमारे जो मसाइल हैं दुनिया के साथ वो उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक हम जो है मिलिटरीली बहुत ताकतवर नहीं होंगे। ये अलग बात है कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है वो एक बहुत कमज़ोर ताकत है, और वो जो खित्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं उसको मिलिट्री माइट के जरिए से या ताकत के जरिए से वो खित्ते में जो तब्दीलियां जो पाकिस्तान के हक में जिस तरह वो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, और पाकिस्तान की जो असल ताकत है वो पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की दुनिया को ये मैसेज कि हम जिंदा और खुश रहना चाहते हैं और अमन और सुकून इस खित्ते में चाहते हैं, ताकि बाकी लोग भी उनको समझें और उनसे पाकिस्तान की हुकूमत से वो सुलह सफाई करें, और पाकिस्तान की हुकूमत से उनके जो मसाइल हैं दूसरे ममालिक के वो पाकिस्तान से सुलह सफाई के तरीके से हल करें। लेकिन चूंकि जो बरसर इकतदार तबका है उसने अपने आप को कायम रखना है, इसलिए वो एक दायमी जंग में और एक हमेशा से ना खत्म होने वाली जंग की हालत में अपने आप को रखना चाहते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म उसका फायदा हुआ है। देखें, आपके अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो मुदाखलत थी सोवियत यूनियन के जाने के बाद, उससे इनको शॉर्ट टर्म थोड़ा फायदा हुआ कि इन्होंने नजरियाती तौर पे अपने आप को दूसरों को दिखाया कि देखें हम बहुत जहाद वहां कामयाब हो गया है और हमने रूस को शिकस्त दे दी है, लेकिन उसके जो नतीजे में जो मिलिटेंसी आई और पाकिस्तान जिस तरीके से,
लेकिन सबक सीखा है क्या पाकिस्तान ने? वो तो अभी भी अफगान तालिबान की कयादत अब भी मौजूद है पाकिस्तान में, कोई सबक जो है वो क्यों नहीं सीखा पाकिस्तान ने?
पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है कि उन्होंने सबक नहीं सीखा, और वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं देखते, और उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरान तबके में जो मिलिट्री की इंटरफेरेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों की जो असल सोच है, या आप ये देखें कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं मसलन वो अफगानिस्तान में नहीं गड़बड़ करना चाहते, सिंध के लोग अफगानिस्तान में गड़बड़ नहीं करना चाहते, पंजाब के जो लोग हैं वो अपने रोजी रिजक के चक्कर में हैं, वो उनको अपने बच्चों की तालीम की फिक्र है, इसी तरह फाटा के जो लोग हैं उन्होंने बहुत नुकसान उठाया है, पख्तूनों का तो बहुत ज्यादा खून है, ये सारे लोग जो हैं ये अपने अपने तौर पे चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक सोच है कि जिसमें तालिबान का एक इस्तेमाल है और जिसमें जो लोकल जैश मोहम्मद और इस तरह के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की इंटरनल जो सूरत हाल है उसको कायम व दायम रखने में सियासी मुखालफीन को काबू में रखने के लिए इन जहादी ग्रुपों का एक इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर भी, तो ये पाकिस्तान के अंदर और बाहर का इस्तेमाल जो जहादी ग्रुपों का है उसको जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, तो उनकी जो है वो सोच नहीं बदली, वो एक एडिक्शन उनको चल रही है, एक उनको नशा ताकत का चल रहा है, और वो अपने आप को अफगानिस्तान में और खित्ते में।
लेकिन डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, एक तो स्टेट जो है उनकी पॉलिसीज की आपने बात की, निसाब की हमने से पहले डॉक्टर नैयर ने उसकी बात की, लेकिन यहाँ जो आम लोग हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, क्या इतने सालों में आवाम जो हैं अगर वाकई इस तरह किया जा रहा है उन्हें मजहब के नाम पर इस्तेमाल किया गया पाकिस्तानी बास इलाके के शहरियों को और हथियार के तौर पर उनको इस्तेमाल किया गया, तो उनमें खुद उन्होंने कोई सबक सीखा है? ये गेम जो है वो अभी तक उनकी समझ में क्यों नहीं आई, ये भी सोचने की यहाँ पर है बात है। आप हमारे साथ रहिए, दोबारा हम चलते हैं मोहसिन दावर, हम देखते हैं उनकी आवाज़ हम तक आ रही है या नहीं। मोहसिन दावर साहब जी,
जी जनाब बहुत शुक्रिया। मैं बात का आगाज उसी से करूँगी जहाँ से ब्रेक हुई थी। आपने खुद भी अभी एक बात का जिक्र किया था कि इतना اتنے عرصے تک لوگوں کو اگر یوز کیا بھی ہے تو کیا ان میں خود بھی کوئی تک کوئی شعور آئی ہی یا نہیں آئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع میں تو پاکستان کی ریاست نے ان لوگوں کو گلوریفائی کر کے پیش کیا گیا, تو یہاں پر چاہے جو پڑھا لکھا نوجوان تھا یا کوئی نہ پڑھا لکھا نہ بھی تھا, لیکن اس کے ذہن میں ایک گلوریفائڈ پکچر پیسٹ ہو چکی تھی ان جو بھی لوگ افغانستان میں لڑ رہے تھے. لیکن جب سے کابل فالٹ,
جی محسن داور صاحب, شاید آپ کی باتیں جو ہیں وہ ہماری جو سسٹم ہے اس کو پسند نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ جی آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اس وقت ایک مختصر ہم انٹرویو آپ کو سنانا چاہیں گے. کمال سادات جو ہیں افغانستان کے یوتھ افیئرس کے آپ وزیر ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے. وہاں جو نوجوان نسل کی سوچ ہیں اس میں کہاں تک تبدیلی آئی ہے گزشتہ 14 سالوں میں, اور حکومت اس سے کس طرح منفی سوچ سے نمٹ رہی ہے, آئیے سنتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامین, اور اب سنتے ہیں وہ انٹرویو جو کچھ دیر پہلے میں نے کیا ہے کمال سادات, یوتھ افغانستان کی یوتھ افیئرس کے وزیر سے, آئیے سنتے ہیں.
تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے کہ میں ڈپٹی منسٹر پوسٹ میں آئے ہوں, اور بہت زیادہ پراونس کو صوبے میں اور جو ضلع تھے نوجوانوں کے گاؤں اور گھر پہ میں گئی تھے, اور ان کے ساتھ انٹرویوز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں میں نے. اور تقریباً یہاں افغانستان پہ بہت زیادہ جو نوجوان اور جوان ہے اس کی فکر گزرے 14 سالوں میں بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے. یہاں پہ تمام نوجوان, تقریباً تمام نوجوان جو لڑکی اور لڑکیاں ہیں, اس کے خیال میں یہ ہے کہ ایکسٹریزم ہے نا, یہ افغانستان کے لیے مفید نہیں ہے. اور ایکسٹریزم ہے کہ افغانستان میں تقریباً 40 سالوں سے افغانستان میں جنگ تھے. آج افغانستان میں مجاہدینوں کے کامیابی کا دین ہے 700-700. اس میں آج بھی افغانستان کے مختلف صوبوں پہ نوجوانوں نے مظاہرہ کیا ہے, اس پہ جلسے کیا ہے, اور جو نوجوان ہے وہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کر رہے کہ جو ایکسٹریزم ہے افغانستان پہ اور افغانستان کی جو ہمسایہ ممالک ہے, اس پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے, بہت زیادہ کام کرنا ضروری ہے, کیونکہ ایکسٹریزم اور جو افراطیت ہے نا افغانستان کو اس جگہ پہ, جو حالت افغانستان کی ٹھیک نہیں ہے, اس کو اس اندازے کو پہنچ گیا ہے. لیکن میرے خیال میں افغانستان کی نوجوانوں کی یہ فکر ہے کہ ایکسٹریزم جو افراطیت ہے یہ تو افغانستان کے لیے مفید نہیں ہے, اور حکومت سے خاصتاً مجھ سے یہ نوجوان ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی نفع کے لیے, اس کی ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ضروری ہے.
اوکے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ خود بطور یوتھ افیئرز منسٹر کے اور آپ کی جو حکومت ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟
میں تقریباً دن پہ ہزاروں کے حدود میں نوجوان ہمارے آفس کو آ رہے ہیں, اس میں لڑکیاں اور لڑکی ہے نا, اس کے ساتھ میں نے جو شارٹ کٹ کورس ہیں کابل پہ, صوبے میں ضلعوں پہ, اس کے لیے شارٹ کٹ کورس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی علماء ہے اس کی بھی ایک کمیٹی ہے, اور اس کے ساتھ جو فنکار اور ہنر مند ہے اس کی بھی کمیٹی ہے, اور نوجوان تمام صوبہ میں نوجوانوں کی کمیٹی ہے. اس کے ساتھ میں ہمارے جو دفتر ہے آفس ہے کام کر رہے, اور میرے خیال میں اس چند سالوں سے اس طرف جوانوں کی جو نظر ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے.
اچھا کمال سادات صاحب, لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دھماکے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں, اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر خودکش حملے ہوتے ہیں, اور ان خودکش حملوں میں بیشتر تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے ایسے نوجوان اب بھی موجود ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ نوجوان جو ہیں یہ مختلف جو وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں انتہا پسند, ان کی طرف راغب کیوں ہو رہے ہیں؟
افغانستان میں جو جنگ ہے یہ افغانوں کی جنگ نہیں ہے, لیکن کچھ اور دستے ہیں جو افغانستان میں اپنے نفع کے لیے جنگ جاری رکھنا چاہیے. نو اس لیے جو نوجوان افغانستان میں خودکشی کر رہے ہیں یا جنگ کر رہے ہیں, یہ تو افغانستان میں ٹریننگ نہیں ہو سکتے, افغانستان میں یہ تربیت حاصل نہیں ہو سکتی. افغانستان سے بیرون جو ممالک ہے اپنے اہدافوں کے لیے یہ نوجوان اگر افغان بھی ہیں استعمال کر رہے ہیں.
بہت شکریہ کمال سادات صاحب آپ کا. جی, اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت کی جانب سے کچھ ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز جو ہیں موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں, اس کے باوجود کچھ ایسے سینٹرز جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں, اس میں نوجوان جو ہیں جس طرح مختلف منصوبوں کے تحت ان پہ کام ہو رہا ہے, یہ چیزیں نیبرنگ جو ممالک ہیں ان میں بھی یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. اس وقت دوبارہ ہم چلتے ہیں فاٹا, دیکھتے ہیں محسن داور جو ہیں ان کی آواز آ رہی ہے ہم تک یا نہیں. جی محسن داور صاحب,
جی
اس وقت بالکل پرفیکٹ ہے, لیکن ٹائم بہت, جی ٹائم بہت کم ہے, تین منٹ ہے آپ کے پاس پلیز.
میں بہت شارٹلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب ایک کلیریفائڈ پکچرز ان ٹیررسٹ تنظیمیں جس نام سے بھی تو افغانستان یا کہیں اور کام کر رہی تھی, تو اس کی حقیقت فاٹا کے عوام کو معلوم نہیں تھی, نہ ہی فاٹا کے جوانوں کو معلوم تھی. لیکن جب وہ آئے انہوں نے یہاں پر اپنے کاروائیاں شروع کر دی. شروع میں کچھ نہ شاید لوگوں نے ویلکم بھی کیا ہوگا, لیکن ریاست کی سربراہی میں ریاست کی ناک چلا کر وہ آئے, وہاں پر انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کی, اور جب وہ فاٹا کے عوام ان کی حقیقت سے اشکار ان کی حقیقت ان پر اشکار ہوئی تو ٹائم اس وقت کافی گزر چکا تھا. وہ اپنی تباہی مچا چکے تھے اور وہ اپنی جڑیں بھی معاشرے میں مضبوط کر چکے تھے اور کافی انہوں نے اپنا وہ دائرہ اختیار پھیلا چکے تھے. فاٹا کے عوام میں یہ شعور بالکل آ چکا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے, کون سی چیز ہمارے فائدے میں ہے. آپ نے شروع میں ایک گیم کی بات کی, فاٹا کے عوام بھی بالکل اس گیم کو سمجھ چکے ہیں کہ بھئی یہ گیم کس لیے کھیلا جا رہا ہے, یا یہ جو افغانستان میں پہلے ہو رہا تھا یہ جہاد تھا یا یہ کوئی اور قسم کی سازش چل رہی تھی, یا اب یہاں پر پاکستان کے زمین یا جو ہو رہا ہے اس پورے فاٹا کے عوام چکے. لیکن آپ مسئلہ پر فاٹا کی یوتھ شروع میں وہ اس انتظار پر تھے کہ ریاست اپنا عملداری دکھائے گی اور ریاست ایکشن لے گی, وہ ان کو وہاں پر عمل اور امنیات قائم کر کے دے گی. لیکن جب ان رفتہ رفتہ یہ بھی اویئرنیس آ رہی ہے, یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان ریاست بھی اس میں برابر شد وہ بھی وہ طرح سے عمل نہیں کر رہی تھی یا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی, تو جس طریقے سے دہشت گردی یہاں پر پنپی اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا, اور آنے کے بعد ان کے ساتھ کچھ معاہدے بھی ہوئے, ان معاہدوں کا لب لباب یہی تھا.
جی محسن داور صاحب, بہت اہم باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن بہت دیر سے آپ کی لائن ملی اور لائن میں پھر کافی خرابی بھی ہے. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آئندہ اس موضوع پہ آپ سے ہم بات کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کا بھی، منظر وسیم صاحب، ڈاکٹر عبد الحمید نیر صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ویک تک شہناز نفیس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔